आर्थिक समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने एक प्रार्थना सुनी होगी या ईश्वर के सामने खड़े होकर के आपने कभी गाई होगी। मैं वो गा के अभी आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, कहीं आप अपना टीवी बंद ना कर दें। हाँ, उसके शब्द मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बहुत ही सुंदर सी प्रार्थना है कि हे ईश्वर या खुदा, ओ गॉड फादर, जब कभी भी आपको कुछ तोड़ने की इच्छा हो तो आप मेरे अहम को, मेरे अभिमान को तोड़ दीजिएगा। जब कभी भी आपको कुछ जलाने की इच्छा हो तो आप मेरी बुराइयों को जला दीजिएगा। जब कभी भी आपको कुछ बुझाने की इच्छा हो, कुछ बुझाने का मन करे, तो आप मेरे अंदर की जो क्रोध की अग्नि है, जो प्रतिशोध की ज्वाला है, आप उसे बुझा दीजिएगा। जब कभी आपको कुछ मारने की इच्छा हो तो आप मेरे अंदर की इच्छाओं को मार दीजिएगा। और जब कभी आपको प्रेम करने की, प्यार करने की इच्छा हो तो ऐ खुदा, ऐ मालिक, तुम मेरी ओर देख लेना और मुझे प्यार कर लेना। मैं शब्द, आप अर्थ, आपके बिना सब कुछ व्यर्थ। कितनी सुंदर पंक्तियां है ना, और कितनी सुंदर प्रार्थना है। ये प्रार्थना हम गाते आए हैं और कितने सुंदर शब्द हैं यदि जीवन में ये शामिल हो, और सचमुच ईश्वर यदि हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। ऐसे सुंदर प्रार्थना के शब्दों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
भ्राता जी, हमने बहुत ये प्रार्थना की है प्रभु के सामने, क्या हमारी ये प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करेंगे?
देखिए, वो इसको इस तरह स्वीकार करता है कि इन सब को समाप्त करने के लिए, चाहे अहम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे व्यर्थ की इच्छाएं हो, चाहे अंदर की बुराइयां हो, और चाहे उसे हमें प्यार देना हो, इन सब बातों के लिए वो आकर सत्य ज्ञान देता है और मारना होता है हमें स्वयं इनको, ये सभी बुराइयां हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर देती हैं। अगर हमें उसका प्यार चाहिए, सचमुच वो प्यार भरी नजर से हमारी ओर देखे, उसके प्यार की फीलिंग हमारी पालना करती है, उसकी प्यार की फीलिंग हमें बल देती है और हमें ये एहसास देती है कि वो हमारे साथ है, तो इन सभी को समाप्त करने के लिए हमें श्रेष्ठ ज्ञान की जरूरत होती है। इस पर हम चर्चाएं करते आए हैं। जब तक मनुष्य के पास श्रेष्ठ ज्ञान न हो, तब तक उसे अपने अभिमान का पता ही नहीं चलता, तब तक वो अपने चित्त को शांत कर ही नहीं सकता, और जब तक उसे ईश्वरीय रस न मिल जाए, तब तक बाह्य इच्छाओं के प्रति उसका जो लगाव है, आकर्षण है, जो तृष्णाओं के रूप में उसके साथ जुड़ी रहती हैं, उनसे वो मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक कोई मनुष्य पवित्र न बने, परमात्मा के प्यार का अधिकारी भी नहीं बन सकता।
मतलब शायद इन चीजों की कमी थी, इसीलिए भ्राता जी सदियों से हम ये प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें खत्म तो नहीं हुई, लेकिन और भी ज्यादा बढ़ती गई। तो हमें ऐसा प्रतीत होता था, अभी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हम गाते तो आए हैं, प्रार्थना करते आए हैं, लेकिन ये चीज डबल क्यों हो गई, और मतलब हमारी प्रार्थना में क्या कोई कमी रह गई, ये प्रश्न उठ रहा था।
देखिए, ये हुआ कि बस रोज बच्चों को वो आदत पड़ गई थी, उसको रट लिया, लेकिन किसी को भी सच्चे मन से ये प्रेयर किसी ने की नहीं, किसी ने इस फीलिंग के साथ नहीं की कि मुझे क्रोध आता है, इस अग्नि को बुझा दो, सचमुच मैं बुझाना चाहता हूँ। अभी वो बुझाता रहे, हम जलाते रहे, तो काम नहीं चलेगा ना। किसी को भी ये रियल अवेयरनेस न रही कि हमारे अंदर इस रूप में अहम भाव है, और भगवान इस अहम भाव को मिटाए तो हम भी मिटाएं। बस उसके संकल्प और हमारी इच्छाएं अगर जुड़ जाए, समान हो जाएं, तो हम इनसे मुक्त होते। लेकिन हमने केवल इसको गायन रखा, प्रेयर रखा, भगवान से प्यार मांगते रहे, और ये संभव है कि वो प्यार देता रहा हो लेकिन हम उसको ग्रहण न कर पाए।
बिल्कुल भ्राता जी, जहाँ तक इच्छा की बात है, तो मुझे लगता है कई बार भक्त दिल से, इच्छा से ही गाते तो हैं और कहते भी हैं कि प्रभु ये सब बुरी चीजें हैं, अच्छी नहीं है, और प्लीज इन्हें आप जला दो, मिटा दो, हटा दो, मेरी इच्छा तो थी, लेकिन शायद प्रॉपर विधि की जानकारी नहीं थी, या जैसे आपने कहा सत्य ज्ञान की का अभाव था, कहीं ऐसा तो नहीं है?
क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ये कोई स्थूल बात नहीं है कि इसको हटा दिया जाए, हे प्रभु ले लो। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है और हजारों साल में मनुष्य के अंदर प्रवेश किया है इन चीजों ने। मान लो क्रोध की बात है, अब मनुष्य को कईयों को तो इतना क्रोध आता है, क्रोध उनकी नेचर में समा गया है, क्रोध उनकी फीलिंग्स में आ गया, जैसे नाक पे चढ़ा रहता है हमेशा, ये कहावत है ना। तो इसके लिए जब तक सत्य ज्ञान न हो और मनुष्य इस पे लगातार प्रयास न करे, मिनिमम 6 मास लगते तो 2-3 साल है, पर मिनिमम 6 मास इसके लिए फुल्ली अवेयर हो के इस पे कार्य न करे, तब तक ये अग्नि बुझती नहीं है। इसलिए इन सभी बुराइयों के लिए मनुष्य को एक अच्छे प्रयास की जरूरत है, और वो भी ज्ञान युक्त। इससे काम नहीं चलेगा कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो वो तो फिर आएगा, क्योंकि वो अंदर में गहरी जड़ें जमा चुका है। उसके लिए एक सद्ज्ञान की जरूरत है, सद्विवेक की जरूरत है, और उसको अपने प्रयोग में लाना होगा और धीरे धीरे ध्यान देना होगा कि क्रोध कहाँ उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, उस चीज को हम कैसे समाप्त करें, और साथ में राजयोग का अभ्यास भी हम करें तो बहुत अच्छी फीलिंग होगी। देखिए मुझे एक चीज याद आ गई, अभी आज ही कोई व्यक्ति मुझे मिलने आया
जी।
अच्छा डॉक्टर, कहा एक वंडरफुल अनुभव सुनाता हूँ आपको। एक मास हुआ उसको केवल हमारे पास आते हुए, कहा मैं अपने व्यसनों को छोड़ नहीं पाता था शराब पीना, लेकिन एक मास में बस 2-4 दिन में ही छूट गया था। तो मैंने उसे पूछा, मालूम है डॉक्टर साहब ये क्यों छूट गया और क्यों बाहर नहीं छूटता? लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र बनाए हैं, प्रयास लोगों का बहुत प्रारंभ है, लेकिन छूटता नहीं है। तो कहा भाई मुझे तो पता नहीं चला, बाकी मैं योग अभ्यास किया शुरू से और पता नहीं कब छूट गया। तो बात यही है कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो परमात्मा शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती हैं, हमारा जो रियल स्वरूप है, जो पवित्र है, वो जागृत होने लगता है। तो ये चीजें न जाने कब में पीछे छूट जाती हैं। ऐसे ही क्रोध, अभिमान, इच्छाएं और जो भी बुराइयां हैं, उनको यदि हम जलाना चाहते हैं तो सचमुच हमें राजयोग के अभ्यास की बहुत जरूरत होगी, ताकि हमारे अंदर शक्तियां आ जाएं और हम अपने मन पर कंट्रोल पा लें, इन विषय विकारों से हम मुक्त होते चले। इसलिए हम हमेशा कहते हैं बिना स्पिरिचुअलिटी के, अब यहां हम स्पिरिचुअलिटी एक शब्द में कह दे, राजयोग इटसेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी। बिना इसके अभ्यास के हम न तो उसके समीप जा पाते, न उन बुराइयों को छोड़ पाते जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, न उन अच्छाइयों को हम धारण कर सकते जिन्हें हम करना चाहते हैं।
बिल्कुल, मतलब राजयोग की आवश्यकता होगी यदि हम इन सब चीजों को नष्ट करना चाहते हैं या परमात्मा के प्यार को अनुभव करना चाहते हैं। तो दत्ता जी, प्रार्थना और मेडिटेशन, प्रार्थना और राजयोग में क्या कोई कनेक्शन है? दोनों अलग अलग है, या क्या प्रार्थना करते करते हम राजयोग भी कर सकते हैं?
देखिए प्रार्थना में, प्रार्थना करने वाला मनुष्य उसे जानता नहीं जिससे वो प्रेयर कर रहा है। मान लो क्रिश्चियन लोग अपने यीशु मसीह के साथ सामने प्रेयर करते, वो तो उसे जानते हैं, उनका चित्र, उनका स्वरूप उनके सामने रहता है। लेकिन जो भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो भगवान के स्वरूप को जानते नहीं हैं, मांग रहे हैं, हे प्रभु ये कर दो, तुम्हें जलाना हो तो मेरी बुराइयों को जला दे। पर वो जलाएगा क्यों? मान लो उसकी जलाने की इच्छा न हो, तुम्हें देना ही है तो प्यार मुझे दे देना, तुम्हें ठंडा करना है तो मेरे क्रोध को कर देना।
लेकिन उसे हम अपना मानते हैं, इसीलिए हाँ, वही बातें करते बाते हैं जो हमसे नहीं संभल रही हैं।
नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस इतना ही प्रार्थना और राजयोग में अंतर है कि राजयोग में हम उसे जानते हैं जिससे हम योग लगाना चाहते हैं, इसलिए हम उससे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और प्रेयर्स में हम बिना कनेक्ट हुए अपनी बात उससे कह रहे हैं। तो देखिए, ये तो ऐसा हो गया जैसे हमारे घर में बिजली न हो और लाइन हमने बिछा दी हो, स्विच लगा दिए हो, और हम बस रिक्वेस्ट कर रहे हो चाहे पावर हाउस वालों से, भाई हमें बिजली दे दो, चाहे पावर हाउस से, हे पावर हाउस तुम्हारे पास तो बड़ी पावर है, हमें भी पावर दे दो। और एक है कि हम कनेक्शन जोड़ दें और वहां से पास हो के हमारे घर को जोड़ दिया जाए उससे, और हमारे घर में करंट आ जाए। तो ये ऐसी चीज है, राजयोग माना परमात्मा के आत्मा के स्वरूप को जानकर स्वयं उससे जुड़ जाना और प्रेयर माना भगवान को जाने बिना उससे कुछ मांग करना।
बिल्कुल, मतलब राजयोग से हम सब कुछ जान जाते हैं और प्राप्तियां हमारे लिए सहज और सरल हो जाती है। तो ये क्या कहें ब्रदर जी कि प्रेयर हमारी एक प्राथमिक स्थिति थी, स्टेप थी, और अब हमें उससे आगे बढ़ के राजयोग की ओर बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल, ये सत्य है कि प्रेयर के द्वारा भी कई चीजें सुनी गई, भगवान ने सुन ली। ये डिपेंड करता है कि जो प्रेयर करने वाला वो कितने सच्चे मन से कर रहा है, वो जिसके लिए कर रहा है उसके कर्मों का खाता क्या है, और जो कर रहा है उसका अपना जीवन भी कैसा है। उसकी प्रेयर सुनी जाएगी तो तभी ना, जब उसके पास भी कुछ स्वच्छता हो, पवित्रता हो। तो ये स्टेप्स हैं, नो डाउट, यहाँ से हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते उससे कनेक्ट हो जाते हैं जिससे हम प्रेयर कर रहे थे।
जी जी जी, अमील हमारे पास आया है, ये कहते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जाम बट बिकॉज ऑफ टू रीजन्स माय लाइफ हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। फर्स्ट वन, पीएमटी एग्जाम इज वेरी टफ, देयर आर ओनली फ्यू सीट्स एंड देयर इज अ बिग कॉम्पिटिशन, बट आई वॉन्ट टू गेट अ सीट इन मेडिकल कॉलेज। I am an intelligent student but am frightened because of exam and find that I cannot study properly because of this. What to do? ये PMT की तैयारी।
हाँ, यही हो गया है कि ऐसा नहीं इसको तैयारी नहीं हो रही है, ये इंटेलिजेंट भी है और इंटेलिजेंट बच्चे ही तो वहाँ सेलेक्ट होंगे ना, लेकिन इसने अपने मन को बड़ा निगेटिव, बहुत कमजोर कर लिया है। पहले ये सोच बैठा है कि बड़ा काम है, क्वेश्चन बिना पता नहीं आउट ऑफ कोर्स या कैसे कैसे आएंगे। लेकिन अगर सभी स्टूडेंट ये सोच बैठे, मान लो 1,00,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, लेकिन वो सभी सोच बैठे कि बड़ा टफ है, कंपटीशन, सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा, फिर तो कोई डॉक्टर बनेगा ही नहीं। इसलिए इनके पास जो गलती हो रही है केवल वो विचारों की गलती हो रही है। मैं इनको कहूंगा कि बहुत पॉजिटिव हो जाए, अपने चित्त को शांत करें और ये संकल्प कर ले कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनमें से एक नंबर मेरा भी होगा। अपने चित्त को उमंग उत्साह से भरें। क्या आएगा पहले ये सोच करके, पता नहीं क्या आ जाए, नहीं आएगा तो सिलेबस से ही, कहीं उसी से जिससे आते हैं, जैसे हर साल आते हैं लगभग वैसे ही आते हैं। तो अपने को परेशान न करें, अपने मनोबल को बढ़ाएं। अब ये राजयोग का अभ्यास तो करते ही होंगे, मैं इन्हें कहूंगा जैसा हम सदैव बच्चों को सिखाते आते हैं, रोज सवेरे उठ के 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है, 7 बार। इससे इनके अंदर का ये भय निकलेगा। ऐसा बहुत बच्चों के अनुभव से हमने जान लिया कि ये अभ्यास करने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो भय निकल जाता है, क्योंकि संकल्प का सीधा सा असर हमारे ब्रेन पर जाता है। फिर ये आधा घंटा रोज मेडिटेशन भी कर लें, सवेरे कर लें, 8 बजे कर लें, इवनिंग टाइम में कर लें, और उसमें एक फीलिंग बहुत अच्छी ले लें कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा प्यारा शिव बाबा मेरे साथ है। जिसके साथ भगवान हो उसे भला सफलता कैसे नहीं मिलेगी। ये उमंग रखते हुए मन में आधा घंटा बहुत अच्छा मेडिटेशन कर लें तो निश्चित रूप से इनका भय भी समाप्त होगा और तब इनकी एकाग्रता हो जाएगी स्टडी में। अन्यथा क्या हो रहा है, इस निगेटिविटी के कारण ये एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, एकाग्रता हो जाएगी और निश्चित रूप से सफलता की ओर इनके कदम अग्रसर होंगे।
बिल्कुल, ज्यादातर ब्रदर जी यही लगता है कि इतने सारे लोग देंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स देंगे, पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं, ये भी, और शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी एक दबाव रहता है कि नहीं तुमको क्लियर करना ही है। जैसे मैं एक बच्ची को जानता हूँ तो वो अभी 2 बार असफल हो चुकी है पीएमटी में, तो अब लास्ट अटेम्प्ट है उसका और पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर, तो शायद पेरेंट्स की तरफ से भी एक दबाव वाली स्थिति रहती है, तो भी बच्चे कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं।
पेरेंट्स को ये न कह के अपने बच्चों को उमंग दिलाना चाहिए जी, बेटा तुम बहुत होशियार हो, ये सफलता असफलता तो जीवन में चलती रहती है, 2 बार असफल हो गई हो इसके अनुभव से, अब 3री बार तुम अवश्य सफल हो जाओगे। असफलता भी तो एक अनुभव देती है ना, कहाँ गड़बड़ हुई थी, और ये अभ्यास ये करेंगे तो बहुत निश्चित रूप से वी आर श्योर कि इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा।
जी जी ब्रदर जी, आगे भी ये कहते हैं, एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड हु इज वेरी इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ एंड मीन्स अ लॉट टू मी, बट बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट एंड देन स्टार्टेड रिजेक्टिंग मी। आई अप्लाइड नॉलेज ऑफ बी केस बट द रिलेशनशिप हैज नॉट बीन हीलिंग फॉर मेनी मंथ्स नाउ आई कांट लीव हिम एंड दिस डिस्टर्ब्स मी अलॉट प्लीज टेल मी समथिंग टू हील दिस रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ डीप डिप्रेशन एंड इमेंस अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी आई एम थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड आई कांट हैंडल इट एनी मोर यू आर माई लास्ट होप प्लीज हेल्प मी।
देखिए हम बच्चों को ये हमेशा ही कहते आ रहे, पीछे भी हमने चर्चाएं खूब की हैं कि ये समय हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी स्टडी को। ये अफेयर्स आदि इसके लिए तो बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तो इसको 12वीं इसने की है और अभी इसको एक लंबी यात्रा तय करनी है। अभी से यदि ये विचलित हो जाती है तो इसकी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी और फिर ये अपनी असफलता का दोष और किसी को दे सकती है, चाहे माँ बाप को दे चाहे और किसी को। लेकिन ये जो अफेयर है ये मन को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों के। अब देखिए वो इसको रिजेक्ट कर रहा है और ये उससे प्यार करना चाहती है, बिल्कुल दोनों ही बात निगेटिव हो गई। वो इसको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसका प्यार कहीं और हो गया होगा या किसी गलती के कारण वो इसको पसंद नहीं कर रहा होगा। तो इसे भी इस चीज को समझ कर अभी कुछ समय के लिए अपने चित्त को शांत कर लेना चाहिए। और मैं अब समझ गया कि इसकी एकाग्रता नष्ट होने का और इसको असफलता के भय का असली कारण ये है।
दादा जी हमारे पास दूसरा मेल आया है, ये वंदना जी हैं, ये कहती हैं, वन थॉट कम्स टू माय माइंड अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर आई वेक अप एंड द थॉट इज किसी क्लोज पर्सन की डेथ का, आई एम वेरी अपसेट प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। ये एक अजीब सी बात है कि सुबह उठे और उठते ही तुरंत एक विचार आ गया कि मेरा कोई नजदीकी मुझे छोड़ के जाने वाला।
हाँ, कईयों को स्वप्न आ जाता है उठने से पहले कि डेड बॉडी देख रहे हैं, कोई जाने वाला, कोई नजदीकी संबंधी, और इससे बहुत लोग अपसेट होते हैं। तो मैं तो हंसी में उन्हें कह दिया करता हूँ कि जब तुम डेड बॉडी देखते हो तो समझ लो जिसकी देखी है उसकी आयु बढ़ गई है। इसलिए इनको मैं यही कहूंगा कि जिसकी मृत्यु का इनको संकल्प आता है या बिना संकल्प ही नहीं ऐसा लगता है कोई नजदीकी संबंधी जाने वाला, उसकी आयु बढ़ गई है। क्योंकि ये सभी स्वप्न यथार्थ नहीं होते, इनको सोच लेना चाहिए ड्रीम इज ड्रीम, और अपने को ये संकल्प अब दे देने चाहिए कि मृत्यु और कुछ नहीं है, देह रूपी वस्त्र को छोड़ना है, फिर आत्मा नया वस्त्र धारण करेगी। इसलिए इससे कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, हरेक की मृत्यु एक निश्चित समय पर होनी ही है, इसलिए जिसकी जब मृत्यु निश्चित है उसको कोई शक्ति टाल भी नहीं सकती। ये जानकर भी ये बहुत निश्चिंत हो जाए। बाकी मैं इनको जनरली कहूंगा कि ये बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई इनका नजदीकी संबंधी जाने वाला नहीं है, सब इनके साथ रहेंगे और बहुत प्यार से रहेंगे।
ब्रदर जी एक ऐसा ही मेल हमारे पास और भी आया हुआ था, उनका भी सेम यही था। उनके पास ये थॉट आया करता था कि मेरी माँ अब जैसे जाने वाली है, उनको स्वप्न में भी यही बात आया करती थी और घर कर गई थी ये बात, तो वो भी बहुत ज्यादा इसे परेशान रहती थी, योग के लिए भी बैठती थी, तब भी यही विचार आ जाता था।
उसकी माँ गई थी या
नहीं गई। लेकिन ये विचार ही ज्यादातर आते हैं, लेकिन ये विचार ही उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो वो कह रही थी कि मैं क्या करूं, इस विचार को कैसे अपने मन से हटाऊं, क्योंकि एक बात जैसे बहता जी आप कहते हैं ना कि जो आप बार बार सोचते हो वो हो जाता है, तो उनका भी यही प्रश्न था कि जब बार बार ये विचार मेरे मन में आ रहा है तो कहीं ऐसा हो ना जाए, भय उनका ये।
बस इसके पीछे संकल्प कर लेंगे जो विचार मुझे बार बार आ रहा होगा नहीं, तो उनका होगा भी नहीं। और ये क्या है, कुछ पूर्व जन्मों की बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी रहती है, हो सकता है पूर्व जन्म में उनको ऐसा हो गया हो तो वो जागृत हो गई है फीलिंग, इसलिए वो बार बार संकल्प आ रहा। बाकी ऐसे स्वप्नों की, ऐसे संकल्पों की कभी केयर नहीं करनी चाहिए, और जैसा मैंने कहा इस तरह लेना चाहिए कि जिसकी मृत्यु हमें दिख रही है या स्वप्न आ रहे हैं उसकी आयु बढ़ गई है।
जी 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 ब्रदर जी, अगला मेल हमारे पास आया है, ये कहते हैं, ओम शांति ब्रदर, आई वॉच योर समाधान प्रोग्राम रेगुलरली, आई वॉन्ट एन एडवाइस ऑन माई पर्सनल प्रॉब्लम, माई एल्डर ब्रदर हेट्स मी वेरी मच बट आई डोंट वॉन्ट टू प्रोलॉन्ग द हेट्रेड एंड वॉन्ट हिम टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद मी, ही डजेंट लाइक मी एट ऑल, आई एम कंटिन्यूअसली गिविंग गुड विशेज एंड मेनी टाइम्स आई बाउड टू हिम बट ही डजेंट रिस्पॉन्ड एट ऑल, आई एम वरीड दैट इन फ्यूचर सम सीरियस थिंग्स कुड हैपन, ही ऑलरेडी स्वॉलोड माई पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी बट आई एम कीपिंग पेशेंस एंड टॉलरेंस, स्टिल आई वॉन्ट टू फर्गेट एवरीथिंग विद द नॉलेज ऑफ ड्रामा एंड लाइक टू हैव अ नॉर्मल रिलेशनशिप विद हिम, आई एम वरीड something serious should not happen in future, because many times I also feel anger and hatred and think that some violence will happen between us, which I want to avoid. I already sacrificed my share of property, but he and his wife are so rigid and tough. Please advise what to do.
ये प्रॉपर्टी की समस्या बहुत जगह चलती रहती है और मुझे लगता है कि एक मुख्य कारण उसके मन में हेट होने का यही है कि अरे हमारी प्रॉपर्टी इसको भी चली जाएगी, तो इस कारण वो दोनों इनसे हेट्रेड रखते हैं और इससे इनके संबंधों में कड़वाहट आ गई है। ऐसा लगता है कि पूर्व जन्मों के कहीं ना कहीं ये घृणा के संकल्प और संस्कार इनके रिलेशनशिप में बने रहे होंगे। तो जैसा एक व्यक्ति दूसरे के लिए बहुत बुरे कर्म कर देता है, हमेशा ही उसको परेशान करता है, उसका नुकसान पहुंचाता है या उसे धोखा देता है, तो इस व्यक्ति के मन में उसके लिए घृणा भाव हो जाता है, शत्रु भाव हो जाता है। अगले जन्म में ये भाव कंटिन्यू रहता है तो इनको एक काम तो करना चाहिए कि रोज सवेरे उठकर उसे आत्मा देखकर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, 7 दिन केवल, कि मैंने आपको भूले अभूले कष्ट दिया हो, आपकी कहीं संपत्ति हड़प ली हो, आपकी कहीं बहुत ग्लानी की हो, आपका मार्ग रोका हो, मैं उसको रियलाइज करती हूँ और आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ। यू आर माई रियल ब्रदर, नॉट ओनली ब्रदर बट माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत महान हो, इस तरह के संकल्प भी दे दे उनको। तो ये जो निगेटिव वाइब्रेशंस दोनों के बीच में काम कर रहे हैं ये समाप्त हो जाएंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है, इसने अपना प्रॉपर्टी का शेयर छोड़ दिया है, इट मीन्स शी इज वेरी ग्रेट। इसलिए मैं इस बहन को कहूंगा अपनी महानताओं को अपने अंदर अवेयर रखो, उसकी स्मृति में रहो कि हम बहुत महान हैं और ये संपत्ति आदि न किसी के साथ गई न किसी के साथ जाएगी। एक छोटा सा अनुभव सुना दूं, आज ही कोई मुझे बहन मिली कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, 2 बच्चे बड़े हैं, एक एमटेक फाइनल में है और दूसरा बीटेक थर्ड ईयर में है। मैंने कहा फिर पैसे आदि का? कहा नहीं, पेंशन हमें काफी अच्छी मिल जाती है और उससे हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह चलता है। मैंने कहा बच्चे कैसे हैं? कि बहुत अच्छा ज्ञान योग करते हैं, दोनों बाबा के सपूत हैं ऐसा लगता है। पर कहा मेरा भाई ऐसे ही मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, मेरा बाप विल लिख कर भी गया था लेकिन वो कहता मैं इसे मानता ही नहीं हूँ, तो क्या मैं केस करूँ? देखिए एक ऐसी चीज थी कि प्रॉपर्टी एक अच्छी संपत्ति उसके हिस्से में आ रही है लेकिन भाई उसे देना नहीं चाहता। मैंने उसे समझाया कि मुझे तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत भाग्यवान हैं, तुम्हारे दोनों बच्चे तो इतना कमाएंगे कि उन्हें भी खिला देंगे, कह देना कि आओ तुम भी हमारे पास ही आके रहो और खाओ, तुम चिंता ना करो, तुम अब शिव बाबा की संतान हो, उसकी अथाह प्रॉपर्टी तुम्हें मिल चुकी है, छोड़ो इसको, अब इसके शादी के झंझट में जाना, 10-20 साल केस चलना और रात दिन टेंशन रहना, वो प्रॉपर्टी से ज्यादा तो खर्चा इसमें हो जाता है टेंशन में, क्योंकि टेंशन की कोई कीमत लोग आंकते नहीं है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है ना मनुष्य को। तो संपत्ति आदि, जो लोग संपत्ति के कारण बहुत बुरे काम कर रहे हैं, दूसरों का हिस्सा हड़प रहे हैं, वो तो सचमुच बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये पाप की संपत्ति उनके बच्चों को भी सुखी नहीं रहने देगी, उनको भी अच्छा नहीं रहने देगी, कोई बीमारी आती है, कई अनहोनी घटनाएं घटती हैं। इसलिए बहुत बड़ी संपत्ति है कि परिवार सुखी रहे, बच्चे चरित्रवान हो, हमारे परिवार में प्यार हो, शांति हो, खुशी हो, अपनापन हो, रोटी कम मिल जाए चलता है, ये सब होना चाहिए।
जी, जी।
तो खुश हो गई तो कहा मैं बिल्कुल नहीं, मैं कहे तो तुम्हारा ही भाई छोड़ दो, कहो तुम खुश रहो हमारी संपत्ति भी लेके, हमारे पास बहुत संपत्ति बाबा ने दी, एकदम खुश हो गई।
जी, जी।
तो इनको मैं कहूंगा, इन्होंने तो पहले ही छोड़ दी, कितनी बड़ी महानता है। और इनकी दूसरी मानता ये कि अपने संबंधों को बहुत स्वीट बनाना चाहती हैं, तो आधा घंटा अपने भाई को रोज राजयोग मेडिटेशन का दान भी करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ये 21 दिन तक ऐसा कर लेती हैं तो इनके संबंधों में मधुरता आ जाएगी।
शुक्रिया फतेह जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए, चर्चा के लिए, सभी को बहुत सुंदर समाधान प्राप्त हुआ है और अपने जीवन में जरूर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका जीवन खुशहाल हो, सरल हो, सहज हो, आप ही प्रार्थना और साथ ही मेडिटेशन की ओर बढ़ें, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकर्मी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान।
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।